بسم الله الرحمن الرحيم مذہب خواتین و حضرات آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک سے پہلے میں اللہ تعالیٰ نے حضور چند تاریخی کلمات پیش کرتا ہوں. یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے کہکشاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ نہ تھا جب یہاں تھا مگر تو ہی تھی. تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب چوہدری محمد انور صاحب کو تلاوت کروں.
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس شيخ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
بگینے میں مسلمانی خودی کی سلیمی رمز جنہانی خودی کی تجھے گل فقط و شاہی کا بتا دوں غریبی میں نگہبانی خودی کی. قابل احترام جناب جاوید احمد اسلامی صاحب, قابل احترام کونسلر آف پاکستان اعظم محمد صاحب, قابل احترام صدر پاکستان ایسوسیشن آف آسٹریلیا جناب افتخار رانا صاحب, آنریبل گریگ لاری nominated candidate for liberal مذہب خواتین و حضرات, آن بہاف آف پاکستان ایسوسیشن آف آسٹریلیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اس تقریب کو رونق بخشی. آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب جاوید احمد حامدی صاحب جو کچھ ہی دیر میں آپ سے خطاب فرمائیں گے. خواتین و حضرات, بحثیت جنرل سیکرٹری آف پاکستان ایسوسیشن آف آسٹریلیا مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ پاکستان ایسوسیشن آف آسٹریلیا کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ بیرون ملک سے آئے ہوئے مزز پاکستانیوں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کرنا تاکہ کمیونٹی ان کے علم اور تجربے سے مستفید ہو سکے. آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا جناب رانا افتخار محمد صاحب پریزیڈنٹ پاکستان ایسوسیشن آف آسٹریلیا جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنرل گاندھی صاحب, ہز ایکسیلنسی حضرت محمد مائی ڈیئر فرینڈ گڈ مارننگ, کونسلر مسٹر شفاف بنگ شیر کوسا, member of my associations, respected media, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. On behalf of Pakistani community and Pakistan Association, it gives me great pleasure to welcome you all, especially our distinguished guest, Mr. Jaweed Gandhi. We are grateful to him that he has missed this occasion despite his various engagements and busy schedule in Australia. Also, I am thankful to my dear friend Craig Laundry, candidate for Reid, for joining us today despite his being busy in his election campaign. Thank you. I am very happy to welcome Mr. Jaweed Gandhi from Pakistan. He needs no introduction, and the entire Pakistani nation is proud of him and his achievements. His contribution as a scholar is well known among many, not only in Pakistan but worldwide. But just a brief, Mr. Jaweed Ahmed Gandhi is a well known Pakistani Muslim Quran scholar and educator. He is the founder of Al Mawab Institute of Islamic Science and was a member of the Council of Islamic Ideology. Mr. Gandhi is a constitutional body responsible for giving legal advice on Islamic issues to the Pakistani government and parliament. Taking this opportunity, I would like to inform you, sir, that the Pakistani Australian Association was established approximately 40 years back as a non-critical and non-profit organization dedicated to the welfare and well-being for the Pakistani community, situated in Sydney. Our community, which was hardly 500 in number 40 years back, has mashallah grown to almost 100,000 now. They comprise of professional doctors, engineers, IT professionals, teachers, solicitors, businessmen, and people from various walk of life. And just last week we had our annual Pakistan Association Pakistan Day function, where we were joined by many, many state and federal MPs, many organizations, leaders, the High Commissioner of Pakistan, members of many Pakistani groups, and people from all over Australia joined as guests. This was a very successful event and was enjoyed to many. I feel proud and pleased in informing you, Gursat, that we are often involved in collection of charity for our brothers and sisters in Pakistan and other parts of the world in their time of need. The association and the community have always been forthcoming and united in crises, whether that be in the time of earthquake, floods, or displaced and disabled people. I am sure that with more coordination between us, we can achieve our mutual goal of helping the needy in Pakistan. I would like to thank you again for your kind presence today. It's an honor to meet such as well, now famous scholar from Pakistan. Thank you very much. Allah Hafiz. Pakistan.
نگاہ فرق میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ ملتا، نہ وہ نگاہ میں شوقی تو دل بری کیا ہے، اسے نہیں ہے سر اسے نہیں ہے تمنا ہے سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں بہلاؤ ہوگا جناب کونسلر پاکستان جناب اعظم محمد صاحب کو بلائیں اور اپنے خیالات سے نوازیں کونسلر محمد پاکستان اعظم
صاحب President of the Association, our dear friend, Secretary General Mr. Chauhan, who competes now with the bigger poets of Pakistan, and mashallah doing a good job. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, bhai bhai. आपके दरमियान में नहीं आना चाहता इतने बड़े स्कॉलर के अगर रोके हुए सो आई विल नॉट टेक मच वर्ड्स बिकॉज ऑल ऑफ अस लिसन टू हिम मुझे यह शर्फ हासिल हुआ था कि थोड़ी देर के साथ बैठा एंड इतना मैं मुतासर और इम्प्रेस हुआ कि जो सवाल मेरे जहनों में सालों से मुझे कंफ्यूज कर रहा था اتنی سمپلسٹی کے ساتھ انہوں نے ایک سیکنڈ کے اندر ایسے کمپلیکس ایشوز کو سمجھا دیتے ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان میں ہمیں ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے ایسے اسکالرز کی ضرورت ہے جو صحیح انٹرپریٹیشن اسلام کی ہمارے سامنے لائے اور جو ہم نے خام خواہ کی پیچیدگیاں آپس میں ہم الجھے ہوئے رہتے ہیں ان سب سے ہمیں پاک کرے اور جو اسپرٹ ہے ہمارے دین کا اس کی طرف ہمیں We all want to go to our respective home, families, friends, and for you, till this Easter Eve to be here, we are really very thankful for that. Thank you. All of you.
दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फिकर शनाख दे उसको, सुकून से लाला और गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीन मेरा तरीन अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी का मेज गरीबी में नाम पैदा कर। राम का बतिया हिस्सा जनाब डॉक्टर खारदी साहब जारी रखेंगे, तो मैं दावत दूंगा डॉक्टर गुरुदास जी साहब को, तो उनको राम का बतिया हिस्सा लेकर चलो।
साहब की वजह शोहरत तो एक आलमदीन की है, लेकिन आज वो जिस मौजू पर खिताब फरमाने जा रहे हैं पाकिस्तान संदेश और देखो, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान चेंजेस और गांधी साहब क्योंकि आमदनी के साथ एक माह इमरान खान भी है, तो आज हम इनकी बातों से इस्तेमाल करेंगे। प्रोग्राम की तरतीब है, गांधी साहब को 20 मिनट के लिए खिताब फरमाएंगे, उसके बाद हम सवाल इकट्ठे करेंगे आपसे। उम्मीद है कि आपको कागज और पेंसिल दे दिए गए होंगे। तो सवाल आपके पहले हिस्से में मौजू से रिलेटेड सवाल किए जाएंगे, और कुछ अगर वक्त बाकी बढ़ जाए तो हम इंशाल्लाह आपके दिनों में जो भी सवाल आते हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर एडू रामजी साहब और तेरा पैसा ऐसा भी मैं जिस वक्त पाकिस्तान में था उस वक्त अगर यहाँ आता तो शायद मेरे जज्बात मुख्तलिफ होते, लेकिन अब जिस तरह आप महाजिर हैं मैं भी उसी तरह महाजिर। जिस तरह आपने अपना मुल्क छोड़कर ऑस्ट्रेलिया को अपना वतन बना लिया है, मैं भी हिजरत करके मलेशिया जा चुका हूँ। पाकिस्तान में होते हुए बाद अवकात हमें पाकिस्तान की कदर नहीं होती, वहां के हालात देखकर भी कभी कभी मायूसी तारी हो जाती। ये एक अजीब तजुर्बा था, बज़ाहिर हम महसूस करते हैं कि मिट्टी है, जमीन है, खुदा की दुनिया बहुत वसी है, बहुत से मुल्क हैं, बहुत सी सल्तनतें हैं, लेकिन इंसान अपने वतन से कैसी मोहब्बत करता है, उसका कैसा ताल्लुक होता है, इसका सच्चा तजुर्बा उसी वक्त होता है जब वो अपने मुल्क से बाहर रहने के लिए मजबूर होता है। इस वजह से मैं समझ सकता हूं कि मेरे मेजबानों ने इस मौजू का इंतखाब क्यों किया है। कहा है कि पाकिस्तान के हालात हम सुनते हैं, और खबरों में पाकिस्तान के हालात सुनकर और भी ज्यादा दिल बैठता रहता है। इस वक्त पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं, बजाय एक तब्दीली की तवक्को की जा रही है, इसी पस मंजर में गालिब ने इस मौजू का इंतखाब किया। मैं एक बुनियादी बात की तरफ आपकी तवज्जो दिला के आगे बढ़ूंगा, और वो ये कि पाकिस्तानी कौम कोई मामूली कौम नहीं है। और मैं ये इसलिए शर्त नहीं कर रहा हूं कि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूं, बहुत सी अखबार को देखने के बाद ये अंदाजा होता है कि पाकिस्तान के लोगों में कितनी जहानत है, कितने आला फिक्र के इम्कानात है। पाकिस्तान में जो लोग इल्म की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं उनका दर्जा भी कितना बुलंद है। बाकी उलूम व फुनून से भी मैं कुछ वाकिफ हूँ, लेकिन मज़हबियात के मामले में आपसे अर्ज कर सकता हूँ कि शायद बरे शरीर की सतह करीब इस वक्त दुनिया में कहीं नहीं पाया। पाकिस्तान के पास मसाइल की भी कमी नहीं, अल्लाह ताला ने वो सब कुछ दे रखा है जो किसी कौम की तवक्को हो सकता है। मादरियात के जखायर भी है, एक बड़ा ज़रई बेस भी है, सारी दुनिया के लोग मिलकर अगर कोई आ नहीं पड़ता तानते और हमें अपनी जमीन से प्याल उगा के भी खाना पड़े तो हम सकता है, ये मामूली बात नहीं है। इस वजह से जहां तक पोटेंशियल का ताल्लुक है यानी बेकूबा पाकिस्तान में क्या कुछ है उसमें मायूसी की कोई बात नहीं। यानी अल्लाह ताला ने अपराधी लिहाज से भी माली लिहाज से भी वो सब कुछ दे रखा है जिसकी कोई कौम अपने परवरदिगार से तवक्कु कर सकती है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान के कुछ बुनियादी मसले और मेरे नजदीक पाकिस्तान का कल और उससे मुतल्लिक अंदेशे और तवक्कुआत सब उन्हीं मसलों से मुतल्लिक है। उसमें एक चीज तो बिल्कुल की वर्ड की हैसियत रखती है, यानी अगर बात को समेट कर दो लफ्जों में बयान किया जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारा बुनियादी मसला गुर्बत और जहालत है। और ये दो चीजें ऐसी हैं कि लाजमो मजलूम हो जाती है, गुर्बत से जहालत पैदा होती रहती है और जहालत जहां हो वहां गुर्बत को खत्म करना आसान नहीं होता। इस वजह से बुनियादी तौर पर तो यही चीज है कि जिसने पाकिस्तान के लोगों को बहुत से अंदेशों में मुबतला कर दिया है, लेकिन इससे आगे बढ़कर भी कुछ चीजें समझने और समझाने की। हमारे सियासतदान जब पाकिस्तान पर गुफ्तगू करते हैं या दानिश्वर पाकिस्तान पर गुफ्तगू करते हैं तो आपको बताएंगे कि हमारे यहां करप्शन है, वो ये बताएंगे कि इंसाब नहीं हुआ, वो ये बताएंगे कि जागीरदारों ने पाकिस्तान में कब्जा कर रखा हुआ है। इस पर प्रयास कर लिए बहुत सी चीजें आप अखबारात में भी पढ़ते हैं, तकरीरों में भी सुनते हैं, गुफ्तगुओं में भी बहस आती है। मैं भी जब पाकिस्तानियों के पास बैठता हूं तो बिलमूम यही चीजें हैं जो मौजूद बहस रहती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत में नई आवाजें दाखिल हुई हैं उनका भी ज्यादातर मौजूद यही होता है। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात दर्ज करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर वो क्या चीजें हैं जो इन सारे मसाइल का सबब बन रही हैं, वो क्या चीजें हैं जो पाकिस्तान में हालात को दिगरगुन से दिगरगुन करती चली जा रही है। न वो जेरे बहस आती है, न उनका तजिया होता है, न उनके बारे में लोग कुछ ज्यादा गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, बल्कि अगर किसी मौके पर उनका जिक्र भी आ जाए तो गुरेज और फरार के रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। उसमें कुछ मुश्किल भी है जिसको मैं समझता हूं, लेकिन अब आपने मुझे इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए इशारा फरमाया है तो मैं ये चाहूंगा कि उन बुनियादी मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो मंजूर करूं। सारे उद्देश्य और सारी तवक्कुआत मेरे नजदीक वहीं से टूटती है, बाकी चीजें कशर की हैसियत रखती है, यानी एक ऊपरी चीज है जो चीज अंतर दाखिल हो चुकी हुई है उसको समझने की जरूरत है। इससे हो सकता है कि आप इख्तलाफ करें और इख्तलाफ में ही तरक्की का राज है, लेकिन आपने मौका दिया है तो मैं अपना उत्तर बयान करने की जसारत कर रहा हूं। पहली चीज जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन गई है और हमेशा से मसला थी, लेकिन अब पाकिस्तान की हर बुरी खबर तरक्की के उससे वाबस्ता हो गई है, वो आप जानते हैं कि इंतहा पसंदी है, दहशतगर्दी है, कत्ल वारदात है, जिसका पाकिस्तान में रोज तजुर्बा होता है। और क्योंकि अच्छी खबरें मीडिया का मौजूद नहीं होती इसलिए जब हम बाहर होते हैं तो उसी का तजुर्बा होता है। इसका रूट काज क्या है, कहां से पैदा हुई ये चीज, मैंने जिस तरह व्यक्त किया असल मसला वो है, लेकिन उसको मौजूद बनाने के लिए कोई शख्स तैयार नहीं। वो क्या चीज है, वो पाकिस्तान के तालीमी निजाम में मजहबी और गैर मजहबी की तफरीक है। दुनिया में कभी किसी इल्म और फन की स्पेशलाइजेशन के लिए यह तरीका नहीं इख्तियार किया जाता कि आप 5 साल की उम्र में एक बच्चे को डॉक्टरी के या इंजीनियरिंग के स्कूल में भेजें। दुनिया भर में और हमेशा से जब से दुनिया बनी है बच्चे को पहले 12 साल कमोबेश ब्रॉड यानी आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप वकील बनना चाहते हैं, आप साइंसदान बनना चाहते हैं, आप मजहब के आगे बनना चाहते हैं, ये सब इख्तिसास के शोबे यानी ये स्पेशलाइजेशन के शोबे। 5 साल की उम्र में बच्चे को इंजीनियरिंग के स्कूल में नहीं भेजा जाता, उसको ब्रॉड बेस्ड तालीम के लिए पहले आप 12 साल तक कुछ जुबानें सिखाते हैं, कुछ स्किल्स कुछ जरूर सिखाते हैं जो आगे चलकर उसके काम आ सके, फिर एक तदरीज के साथ ग्रेजुअली आप उसको वहां ले जाते हैं जहां वो इंतखाब की जगह पर आ जाता है। और ये इंतखाब भी आप हतमी नहीं होने देते बल्कि पर मुतवाजी चलाते हैं, यहां तक कि 12 साल की तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर वो फैसला करता है कि अब मुझे मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, साइंस में इख्तिसास करना है या किसी और फील्ड में। लेकिन हमने इसको रवा रखा हुआ है कि हमारे बच्चों को अगर बजली तालीम देनी हो तो उनको बजली मदरसे में देनी है, उनके लिए ब्रॉड बेस तालीम पाने का कोई मौका ही बाकी है। यानी ये दुनिया का एक बिल्कुल निराला निजाम है कि जिसमें आप बच्चे के बारे में ये फैसला कर देते हैं कि वो दीन का आलिम बने। हो सकता है खुदा ने उसको तरफान बनने के लिए पैदा किया हो, मुसव्वर बनने के लिए पैदा किया हो, शायर बनने के लिए पैदा किया हो, अदीब बनने के लिए पैदा किया हो, यानी उसको वो बुनियादी तालीम हासिल ही नहीं होती जिस बुनियादी तालीम के बाद वो अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सके। और मैं आपसे अर्ज करूं कि आपकी जदीद तालीम में आपका लोग ज्यादातर है, आप शायद नहीं जानते कि किसी एक मकतबे फिगर का भी अगर आप जायजा लें तो हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक 20,000 से ज्यादा दीनी मदारिस पाकिस्तान और लाखों की तादाद में लोग वहां पढ़ते हैं। मैं खुद उस तालीमी निजाम से गुजरा हुआ हूं और मैं आपसे यस करता हूं कि उस पस मंजर में जो लोग, क्योंकि मेरी तो जदीद तालीम भी साथ उसी तरह हुई है, उस पस मंजर में जो लोग दीन और रूप को हासिल करते हैं उनका नफ्सियाती रिश्ता लोगों से कट चुका होता है। वो दुनिया में तालीम की क्या बुनियादें हैं उनसे कभी आशना ही नहीं होते, उनके और उनके मुखातबीन के दरमियान इब्लाग और कम्युनिकेशन की कोई बुनियादी बाकी है, उनकी बात गुफ्तगू और उनकी इस्तलाहात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी होती है क्योंकि उन्होंने वो ब्रॉड बेस तालीम नहीं पाई होती जो कम्युनिकेशन का जरिया बनती है। और उसके बाद हादसा ये होता है कि वो जो दीनी मदारिस है वो सिर्फ यही नहीं है कि अलग से मजहबी निजाम चलाते हैं, फिर वो फिरकों में बटे हुए हैं। यानी कोई हदीस का मदरसा है, कोई दुबंदियों का मदरसा है, कोई बरेलियों का मदरसा है, जितने भी मुसलमानों के अंदर गिरोह है वो अपने अपने मदारिस कायम करते हैं और उन मदारिस में इस चीज को बुनियादी हैसियत हासिल है कि आप सब कुछ कर सकते हैं इख्तलाफ नहीं कर सकते। यानी आप अलमिया देखिए कि एक तरफ आपने बच्चे को ब्रॉड बेस्ड तालीम ही नहीं, आपने उसके और सोसाइटी के दरमियान इख्तलाफ का रिश्ता ही कायम नहीं किया और उससे आगे बढ़कर अब आपने उसकी बरसों तक यानी कमो बेश 10 साल तक ये तरबियत कर दी है। तरबियत क्या की है, इसको दीन का मसला बना दिया है। दीन का मसला क्या बनाया है, इसके लिए जन्नत और जहन्नम का फैसला इस बुनियाद पर करना है कि वो जिस दायरे के अंदर दीन को समझ चुका है उससे इकरार नहीं करेगा। इंसानी जहन सवाल करता है, एतराज करता है। दौरे जदीद में आपकी जो नई नस्लें हैं वो अब किसी भी आहनी पर्दे के पीछे जिंदगी नहीं बसर करती, उनके लिए दुनिया के दरवाजे खुल चुके हुए हैं तो बेशुमार चीजें उनके जहनों से सामने आती हैं, तो हमारे आलिम के उनके दरमियान कोई रिश्ता कायम नहीं होगा। और फिर जो मजहब वहां पढ़ाया जाता है उसमें जो बहुत सी चीजें दूसरी बता दी जाती हैं उसमें ये बात भी बताई जाती है और इससे कोई मदरसा का वो किसी मकबे जगह का वो खाली नहीं है कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने ये मिशन सौंपा है कि जब उनके पास ताकत होगी तो दुनिया में किसी गैर मुस्लिम की हुकूमत कायम नहीं रह रहे। ये तालीम कोई ऐसा मदरसा नहीं है जिस पर रखी जाती है। हर एक को ये बताया जाता है कि इस वक्त अगर दुनिया में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत कायम है या अमरीका की हुकूमत कायम है या बरतानिया की हुकूमत कायम है या कोई और गैर मुस्लिमों की हुकूमत कायम है तो मुतमिन रहिए ये सिर्फ इसलिए है कि हमारे पास ताकत नहीं है। ताकत आएगी तो हम इसका खात्मा करेंगे। इसके सिवा भी चंद चीजें हैं लेकिन मैं उनका जिक्र इस वक्त नहीं करना चाहता। इस जहन के साथ जो लोग तैयार होते हैं फिर बदकिस्मती ये हुई है कि हमारे यहां अरबाब सियासत ने उनको अपने सियासी मकासद के लिए बरसों तक इस्तेमाल भी किया है और उनके पास जुबान तो थी जिससे वो जिसको जफर अली खान ने कहा है कि अल्तम बघेर अल्तर निकाल बिच्छू बघेर दो और सांप निकाल दो उसके साथ बंदूक दिया गई। इसलिए अब तत्व भारत का एक तूफान बनता है। ये मेरे नजदीक पाकिस्तान का पहला बुनियादी मसला है कि इसकी तालीम का निजाम मजहबी और गैर मजहबी में बांट दिया गया है और फिर उसमें ये सारे मकासद भी दाखिल हो गए। मैं पूरी दर्दबंदी के साथ आपसे यह करता हूं कि इस मसले को कोई शख्स भी जेल में लाने के लिए तैयार नहीं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं। मैंने सियासत में लोगों ने कुछ नई दुनिया पैदा करने का आज़म किया है उनसे बार बार पूछा है कि आप इस मसले के बारे में क्या राय रखते हैं। अगर कोई रखते भी है तो जुबान पर लाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं इसको पाकिस्तान का बुनियादी मसला समझता हूं और अगर इसको हल न किया गया तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि आगे हमें क्या देखना पड़ सकता है। दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि मस्जिद एक माशरे का इंस्टीट्यूशन है। इस्लामी नुक्ता निगाह से आप नमाज पढ़ने के लिए पांच वक्त मुसलमानों को नमाज पढ़नी होती है जिसको यहां आप लोग मुसल्ला कहते हैं, प्रेयर रूम कहीं चाहे बना लें। लेकिन जामे मस्जिद इस्लामी कानून में ये फर्द की चीज ही नहीं है, यानी ये स्टेट इंस्टीट्यूशन जहां कहीं भी मुसलमानों की हुकूमत होगी ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसको अपने कंट्रोल में रखे और मस्जिदों को फिरकों की मस्जिद न बनने दे, वो पूरे माशरे की मस्जिद हो, खुदा की मस्जिद हो और वो उलमा के लिए या दीनी रहनुमाओं के लिए वादो तबलीग का मरकज नहीं बल्कि स्टेट के मजहब के साथ रिलेशन की मरकज। इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं, मुसलमानों के तमाम ज्यूरिस्ट फुकहा इस पर मुत्तफिक हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहां जिस तरह मजहबी और गैर मजहबी की तफरीक को बुलाया किया गया है बल्कि उसी को असर समझ लिया गया है निजाम तालीम में, बिल्कुल यही मामला जामे मस्जिद और जुमे के मेंबर के साथ हुआ है। वो बड़े तवील अरसे से उलमा के सुपुर्द कर दिया गया है। आप जिस माशरे में भी ये करेंगे वहां मस्जिद मजहबी मुराफत को फैलाने का जरिया बनेगी, वो खुदा की मस्जिद नहीं रहेगी, वो फिरकों की मस्जिद बन जाएगी, वो लोगों के लिए ताकत का मरकज बनेगी और मजहबी बुनियाद पर वो उस ताकत को बदतरीज एक माफिया में बदल देंगे। आप इसको नहीं रोक सकते। इसी वजह से इस्लामी कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं रखी है। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहां ऐसा ही है और इससे जो कुछ नतज निकले हैं मेरे पास उनके वक्त महदूद है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन इशारा कर रहा हूं कि ये चीज पाकिस्तानी माशरे में मजहबी इंतहा पसंदी को एक ताकत बनाने में गैर मामूली हैसियत इख्तियार कर गई और जहां भी आप ऐसा कहेंगे यही होगा। कभी आपने सुना है कि इमाम अबू हनीफा किसी मस्जिद में का खुतबा देते थे? कभी सुना है कि इमाम मालिक कहीं जुमे का खुतबा देते थे, कभी ये सुना है कि इब्ने तैमिया किसी मस्जिद जुमे का खुतबा देते थे, कोई सवाल नहीं था इस बात। ये एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है, इसका उलमा से कोई फर्क नहीं। वो जुमे रात को, मंगल को, बुध को जब चाहे आए, लोगों को दीन सिखाए जो उनसे सीखना चाहते हैं, लेकिन वो मौका जो हफ्ते के बाद आना है और जिसमें लोग दीनी लिहाज से पाबंद है कि वो हाजिर हो, इसका उनसे कोई फर्क नहीं। इस्लामी कानून में ये बात हर किताब में लिखी हुई है, लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई आदमी ये बात कहने के लिए तैयार है? तो दूसरा बड़ा मसला, तीसरा बड़ा मसला ये है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, उस वक्त से हमारे यहां एक कश्मकश पैदा हो गई। बयान किया जाता है कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया, जाहिर है कि उसमें ये बात वाजिब थी कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास शुमार मगरबी हिंदुस्तान में, मशरकी हिंदुस्तान में इलाके हैं, हमारा अक्सरियत के साथ मामला नहीं हो सका, हमने अलग मुल्क बना लिया। ये सादा सियासी मसला था। दुनिया में ऐसा बार बार होता है कि आपका किसी के साथ निवाह नहीं हो सकता, तो आप शाइस्तगी से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, इससे कोई कयामत ना आती। लेकिन इसमें भी मजहब को इस्तेमाल किया गया, और मजहब का मामला यह है कि यह बड़ी गैर मामूली चीज है, लेकिन इसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं होती। चुनाचे उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा निकला है कि कश्मकश पहले दिन से बरपा है कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून होगा या नहीं होगा, शरीयत का निफाज होगा या नहीं होगा, ये एक मसला है। चुनाचे कुछ लोग सेकुलरिज्म की तालीम दे रहे होते हैं, कुछ निफाज शरीयत की मुहिम चला रहे होते हैं, अब तक भी हम इस कश्मकश से निजात नहीं पा सके। इस दौरान में सवाए कारदाद मकासद के बाकी जितनी कुछ भी कानून साजी हुई है और इस्लाम के हवाले से हुई है, वो सब फौजी आमिरों के दौर में हुई। चुनाचे माशा क्या कहता है, माशरे के नुमाइंदे क्या कहते हैं, उसका कोई बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन हमारी कानून साजी में नहीं हो सकता। इस वक्त भी आप देख लीजिए कि जो कवानीन नाफिज है उनमें बहुत से कवानीन है जो अगर संजीदा मुताला किया जाए तो नजर सानी का तकाजा करते हैं, और बहुत सी चीजें ऐसे भी हैं जो इस्लाम चाहता है कि नाफिज हों लेकिन वो नाफिज नहीं। इस मसले को एक मसला होना चाहिए था, यानी या तो आप बात न करें, कर रहे हैं तो फिर बाहर इसका हल पेश करना चाहिए। इस वक्त भी आप जितनी पाकिस्तान में सियासी जमातें मैदान में उतरी हैं सबके मंसूर उठाकर देख लीजिए, ना पहले मसले के बारे में कोई एक लफ्ज आप देखेंगे, ना दूसरे मसले के बारे में कोई एक लफ्ज देखेंगे, ना तीसरे मसले के बारे में कोई एक लफ्ज देखेंगे। लेकिन ये मसला जब तक हम एक जिंदा कौम की हैसियत से हल नहीं करेंगे, उस वक्त तक जो मजहबी तालीम आप पैदा कर चुके हैं वो उठेगी और वो ये कहेगी कि फिर हम बुजुर्ग बाजू इस्लामी कानून का लिबास करते हैं, और इस्लामी कानून कोई बहर नहीं है, कारण है, और जब वो है तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का जरिया बन जाता है कि आप लोगों को एक हदफ, एक नस्कोलैन, एक आदर्श दे देते हैं, वो उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये उनकी दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी है, और फिर उसके बाद अगर कोई शख्स उनको खुद कुछ हमला करने के लिए भी कह दे तो वो ये ख्याल करते हैं कि वो इस्लामी कानून के लिबास के लिए सब करता है। मैंने जैसे गर्ज किया है कि ये मसला भी पाकिस्तान की बुनियादों से मौजूद है, लेकिन कोई एक शख्स भी इस मसले को जिस तरह, यानी होता क्या है, मजहबी पस मंजर के लोग उसको अपना मजहबी नारा बनाए रखते हैं, और सियासतदान ना उसका इनकार करते हैं ना उसका इकरार करते हैं, दरमियान की राह निकालते रहते हैं। नतीजे के तौर पर बैसियत मजमू एक मुनाफिकाना खिलाफ कौम में पैदा हुई रहती है, हम उस मसले को भी फेस करने के लिए देखने के लिए तैयार नहीं होते। चौथा बड़ा मसला पाकिस्तान की जुबान है। आप ये ख्याल करेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? जुबान एक बात का जरिया है। आप अंग्रेजी में बात कर रहे, कम्युनिकेट कर रहे, आप फारसी में कर रहे हैं, किसी और जुबान में कर रहे हैं, नहीं ये इतनी सादा बात नहीं। ये बात समझ लीजिए कि जुबान महज इतलाक और कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होती। जुबान असल में अपने पीछे सदियों की सकाफत रखती है, इल्म का पस मंजर रखती है, बेपनाह शख्सियात उसमें पैदा हो चुकी होती है। आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कल मलेर जुबान नाफिज कर दे तो आप 10 साल के अंदर अंदर एक बात पैदा कर लेंगे, मीरो गालिब पैदा कर लेंगे, उर्दू अदब का पूरा पसंदर पैदा कर लेंगे, आप उसकी तनबीहार पैदा कर लेंगे, उसके इस्तारे पैदा कर लेंगे। ये नहीं होता। तो जुबान महज इबलाग का जरिया नहीं। पाकिस्तानी कौम इस वक्त तक भी ये फैसला नहीं कर सकी कि उसे अपनी तहजीबी रवायत में काम करे होना है। और पाकिस्तान की जुबान कौन सी है? पाकिस्तान की जुबान कहा गया था कि उर्दू है। आप जानते हैं उर्दू क्या चीज है? इस वक्त दुनिया में 3 जुबानें हैं जो अपनी सकाफत, तहजीब, इल्म और तहकीक के लिहाज से इस्लाम की जुबानें बन चुकी हैं। इस्लाम की कोई जुबान नहीं है, लेकिन जब एक जुबान नशोनुमा पाती है तो वो अपने साथ बहुत कुछ ले आती है। जैसे दुनिया में अब साइंस और टेक्नोलॉजी की जुबान अंग्रेजी जुबान बन चुकी है। साइंस और टेक्नोलॉजी की कोई जुबान नहीं है, लेकिन चूंकि अंग्रेजी जुबान ने उसको नशोनुमा पाने का मौका मिला है तो आप कितनी आसानी के साथ उस पर इबलाग कर रहे थे, तालीम दे रहे थे। यही मामला फारसी, अरबी और उर्दू का है। अरबी से ताल्लुक तोड़ लीजिए तो आपके हाफसे में से 1400 साल गायब होते हैं, फारसी से ताल्लुक तोड़ लीजिए तो 900 साल गायब होते हैं, उर्दू से ताल्लुक तोड़ लीजिए तो 300 साल गायब होते हैं। और जानते हैं कि जब हाफसे से माजी गायब हो जाए तो इंसान बिल्कुल 5 साल का, 7 साल का बच्चा बन गया था। ये हादसा है, लेकिन इस हादसे का भी न किसी सियासी जमात को शोर है, न किसी अनुभव को शोर है, न दानश्वर इसको मौजूद बनाने के लिए तैयार है। हमारे जवानी के जमाने में हमें याद है जब तक डॉक्टर सैयद रुबिल्ला जिंदा थे तो कभी कभार वो 3-4 लोगों के साथ एक प्ले कार्ड उठाकर कहा करते थे कि हमारी जुबान उर्दू है और सड़कों पर फिरते थे। लेकिन इस वक्त आप सब सियासी अनुभव को देख लीजिए, उनके प्रचुर उठा लीजिए, किसी एक जगह पर भी आपको इस बुनियादी मसले के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं मिलेगा, कोई इसका नाम नहीं निकला। इससे हादसा क्या हो रहा है? इससे हादसा ये हो रहा है कि आपकी जो नई नस्लें पैदा हो रही है उन तक अब आपके माजी का इबलाग, उसकी कम्युनिकेशन नामुमकिन हो गई। और दुनिया में अभी तक कोई ऐसा तरीका इजाद नहीं हुआ कि जिसमें किसी कौम के 3 सदियों या 4 सदियों या 5 सदियों में पैदा होने वाले इल्म को, दानिश को, अदब को 24 घंटे में किसी दूसरी जुबान में दे दिया जाए, ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं। तो ये जुबान का मसला कोई आसान मसला नहीं है, ये बड़ा गहरा मसला है, लेकिन इसको अभी कोई सामना करने के लिए तैयार नहीं। और आखिरी और 5वीं बात यह है कि पाकिस्तानी कौम सियासत पर बहुत गुफ्तगू करती है, इलेक्शन कमीशन पर भी बहुत गुफ्तगू करती है, वज़ीर आज़म के इंतखाब पर भी बहुत गुफ्तगू करती है, लेकिन अगर आप गौर करके देखें तो हम सब अखलाकी दिवालियापन में मुबतला है। हम में से हर शख्स मौका मिलने पर झूठ बोलने के लिए तैयार होता है, बदनामी के लिए तैयार होता है, धोखा देने के लिए तैयार होता है। कारोबार करके देखिए, मामला करके देख लीजिए, बिल्कुल मालूम हो जाएगा कि अखलाकी लिहाज से हम कितनी पस्ती में गिर चुके हुए हैं। और कोई कौम कितनी ज़हीन क्यों ना हो, जब वो अखलाकी तौर पर पस्ती में गिर जाती है तो उसकी जहानत अच्छा ताला बनाने पर सर्त नहीं होती, अच्छे ताले को तोड़ने पर सर्त होती है। जहानत तो होती है, लेकिन फिर वो चोरी के तरीके का, सीनाजोरी के तरीके, ईजाद करने में सर्त हो जाती है। आपको एक जाली पासपोर्ट बनाना है, उसका सही तरीका कौन सा है? सारी जहानत का मसल ये होता है। एक साहब ने मुझे बताया कि जद्दा में एक इलाका है, मैं इत्तेफाक से वहां मुकीम था कुछ दिनों के लिए, बताया कि यहाँ के एक पुलिस ऑफिसर को ख्याल हुआ कि यहाँ से जाली पासपोर्ट बनते हैं और उसमें कुछ बड़े शरीर के लोग भी हैं। तो वहां गया, उसने कहा कि भाई बात यह है कि मैं किसी को पकड़ने नहीं आया, मुझे बताओ बनता कैसे। उन्होंने चाय पीछे बैठ के 15-20 मिनट के बाद उन्होंने पासपोर्ट लाके दे दिया। ऐसे बनता है। तो होता क्या है कि जिस वक्त आप अखलाकी लिहाज से मस्ती में गिर जाते हैं तो सियासतदान झूठ बोलते हैं, दानिशमैन झूठ बोलते हैं, आपकी ब्यूरोक्रेसी झूठ बोलती है, आपका आम आदमी झूठ बोलते हैं। कोई मामला करना मुमकिन नहीं है, हर एक दूसरे को धोखा दे रहा होता है। धोखा देना ये फन बन जाता है और फनकार अपने फन पर पकड़ लेता है। ये सूरत हाल कौमों के अंदर जब इस तरह की अखलाकी बस्ती आ जाए तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि इसको इमरजेंसी की बुनियाद पर दुरुस्त करने की कोशिश की। और मेरा ख्याल है कि आप पाकिस्तान से हैं और आप जानते हैं कि मैं इसमें कोई मुकाबला नहीं करता। हर शख्स को इसका तजुर्बा पेश आया होगा। इस सूरत हाल में होना भी चाहिए था ना कि हमारी सियासत दानिश का ये मसला बनता, सबसे बड़ा मसला बनता, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून ये है कि वो किसी कौम को अरूज देते वक्त तो किस बुनियाद पर देता है वो फैसला करता है, लेकिन किसी कौम को जब मार देना चाहता है तो इल्म और अखलाक में मस्ती की बुनियाद पर मारता है। और ये कानून कुरान में बयान हो गया। इल्म के लिहाज से तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह ही गए थे, अखलाकी लिहाज से भी कोई काबिल रश्क छूट गया नहीं। मेरे नजदीक ये पाकिस्तान के बुनियादी मसाले हैं। मैं इन पांचों मसलों को असल में बाकी मसलों की जड़ समझता हूं। अगर हमारी दानिश ने इन मसाइल में से कुछ को भी काबिल तवज्जो जाना तो पाकिस्तानी कौम में बड़ी ताकत है, बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तानी कौम में तब्दीली के लिए भी बड़ी कुवत है। मैं आपको इनाम दिलाता हूं कि फिर अच्छी तवक्कुआत और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। उसको दुनिया की कोई ताकत फिर तारीफ नहीं कर सकती। लेकिन अगर इन मसाइल को हमने दरपोर इतना नहीं समझा, इनसे इसी तरह गुरेज और फरार करते रहे तो फिर अंदेशे ही अंदेशे हैं। और मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल सकता, फिर अंदेशे ही अपूर्ण कौली हाजा वस्तर।
ये पहला सवाल है जी, इस्लामी तर्ज जमहूरियत और लादीनी मगरबी तर्ज जमहूरियत में फर्क सवाल की थी।
जमहूरियत के क्या मतलब है? जमहूरियत का मतलब यह है कि हुकूमत कायम करने का हक किसी मुल्क के लोगों को हासिल। जब से दुनिया बनी है दो नुकता है नजर में, तीसरा अभी तक कोई वजूद में नहीं आ सकता। एक ये कि जिस तरह अल्लाह ताला अपने पैगंबर भेजता है उसी तरह हुक्मरान का इंतखाब भी खुदा करता है। ये रुकता है अंदर सिर्फ मुसलमानों में नहीं रहा, ये दुनिया भर के उलूम में रहा है। मिस्र में आपने सुना होगा कि फिरौन अपने आप को कहता था कि मैं रब्बुकुम को मना रहा, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा परवरदिगार हूं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि वहां गॉड किंग्स थे और वो ये समझते थे कि बादशाह असल में खुदा की तरफ से मुकर किया जाता है। एक नुकता नजर यह रहा है दुनिया में, ये मजहबी इस्तेदलाल के साथ भी पेश किया गया है और गैर मजहबी इस्तेदलाल के साथ भी पेश किया गया है। चुनाचे जिन लोगों को आप दुनिया की तारीख में बहुत बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम करते हुए देखते हैं वो सब इसी लिहाज से अपने आप को जस्टिफाई करते थे। दूसरा नुकता नजर यह है कि किसी कौम के लोगों को हक हासिल है कि वो अपने हुक्मरान का इंतखाब करें, वो अपना नज्म चलाए। तो ये दो नुकता है नजर हमेशा से रहे। सवाल ये है कि अल्लाह का दीन क्या इस मामले में कोई रहनुमाई करता है? तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि कुरान ने दूसरे नुक्ते नजर को मुसलमानों के लिए सही नुक्ते नजर करार दिया। राज्य उसने फरमाया है कि अमरुहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का इज्तिमाई नज्म उनकी आए उनके मशवरे पर मबनी हो। किसी बंदूक को किसी खुदा के मुकर्रर करता शख्स को यह हक नहीं है कि वो मुसलमानों पर अपने आप को मुसल्लत करे। वो अपने हुक्मरान का इंतखाब करेंगे, वो अपना नज़्म चलाएंगे, उनकी अक्सरियत की बुनियाद पर सब फैसले होंगे। इस लिहाज से कुरान मजीद ने सदियों पहले ये ऐलान कर दिया था कि मुसलमानों का निज़ाम एक जमहूरी निज़ाम है। इस बुनियादी बात के बारे में कोई इख्तराब नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इसको खुद कुरान ने वादे कर दिया। और फिर सिर्फ कुरान ने वादे नहीं किया बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने बाद इंतकाल इकरार के लिए हिदायत दी तो उस वक्त भी जिस गिरोह के बारे में ये कहा कि इकरार उनके पास जाना चाहिए उनका तारुफ ये कहकर करवाया कि अन्नासो तबीउल कुरैश। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लोग इनके पीछे, लोग इन पर एतमाद करते हैं, लोग इनको जिम्मेदारी देने के लिए आमादा है, वो किसी और की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। तो गया इंतकाल इकरार के मौके पर भी कुरान मजीद के इस हुक्म की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लम ने यही तालीम दी। और फिर मुसलमानों के एक जिल्ल कदर खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने एक मौके पर जब देखा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो इकरार पर उनके बाद कब्जा कर लेंगे तो उन्होंने खुतबा दिया और वो खुतबा इमाम बुखारी ने नकल किया है, बहुत तफसीली खुतबा है। उसमें उन्होंने अब तक के सियासी हालात पर तबसरा किया और उसके बाद कुरान की इसी हुक्म की रोशनी में लोगों को कहा। तो मैं सबको बता देना चाहता हूं कि ला खिलाफत इल्ला मशवरतन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की राय के बगैर कोई हुकूमत कायम नहीं हो सकती। ये हजरत उमर के अल्फाज है, ला खिलाफत इल्ला मशवरतन मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों की राय के खिलाफ उसके बगैर कोई हुकूमत कायम नहीं हो सकती। और अगर किसी ने ये जसारत की तो वो हाई ट्रीजन का मुजरिम होगा, तगर रतन नहीं जुम तला उसको कत्ल कर दिया जाए। तो इस वजह से कुरान रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और एक जरीर कदर खलीफे के इस ऐलान के बाद इसमें कोई शुबा नहीं रहता कि हमारा निजाम हर हाल में जमहूरी निजाम, हर हाल में जमहूरी। और रही ये बात के जमहूरियत से दीनी होगा या नादीनी होगा, तो भाई जमहूरियत का मतलब है लोगों का फैसला, लोग जितने दीनी होंगे उतना दीनी होगा, जितने गैर दीनी होंगे उतना गैर
दीनी होगा। दूसरा सवाल है कि आपने जो बचपन का बयान किया अपनी स्पीच में अखलाकी द्वार का, तो पूछते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है।
देखिए बात यह है कि कोई भी खराबी हो, यानी ये सिर्फ उस आखिरी नुक्ते के बारे में मैं आज नहीं कर रहा, बल्कि कोई भी खराबी हो उसको दूर करने के लिए तीन जगह होती हैं जहां से उसका शोर पैदा होता है। किसी कौम के अरबाब सियासत, इसलिए कि वो नज्म नस चला रहे होते हैं, वो फैसला कर ले ये मसला है, इस मसले की ये नौबियत है, इसका ये तजिया है, इसका एनालिसिस है, और इसके लिए हमें इसको अपनी तरजीह बनाकर प्रायोरिटी की बुनियाद पर ये हल पेश करना है। तो अगर ये हो जाए तो फिर तो क्या कहने, अगर वो ये शौक ना रखते हो या इसके लिए तैयार ना हो तो दूसरी जगह किसी कौम के उन अहले दानिश की होती है जिनसे बैसियत मजबूरी कौम की इंस्पिरेशन हासिल करती है। और आप जानते हैं कि इसमें असातिज़ा होते हैं, मुखला होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, इसी तरह से आपके सहाफी, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैठे हुए लोग होते हैं, यही लोग होते हैं जिनको कौम सुनती है, देखती है, वो किसी चीज का शौक पैदा कर लेते हैं। بس یہ تو مجموعی اس پر متفق ہو جائے کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے, تو یہ دوسری جگہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی مسلمان قوم کے علماء یہ فیصلہ کر لیں. تو اب آپ دیکھ لیجیے کہ اس میں سے اگر کسی نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو مبارک ہو, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, اور اگر نہیں کیا ہوا تو میرے پاس بھی کوئی طریقہ نہیں اس کو.
کیا ملک حاصل کرنا یا ایک مخصوص سیاسی نظام کے لیے جد کرنا مذہبی طریقہ ہے؟
اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں وہ اپنی کتاب میں بہت وضاحت سے بیان کر دیے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گئے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی وضاحت بھی کر دی ہے. لہٰذا دین میں جو ہمارے فرائض, ہماری ڈیوٹیز, ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ بالکل واضح ہیں, ان میں کوئی اختلاف نہیں. جس اسلام کو میں جانتا ہوں, جس پر میں نے برسوں کام کیا ہے, اس میں جس طرح ہماری انفرادی زندگی کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں اسی طرح کچھ احکام, زیادہ نہیں, کچھ احکام ہماری اجتماعی زندگی کے بارے میں دیے گئے ہیں. یعنی جب مسلمان ایک فرد ہوتا ہے تو کچھ احکام اس وقت کے ہیں, جب وہ شادی کر کے گھر بناتا ہے تو کچھ اور احکام اس کے لیے دیے جاتے ہیں, جب وہ ایک معاشرے میں کاروبار کرنے نکلتا ہے یا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو پھر کچھ اور احکام اس سے متعلق ہو جاتے ہیں, اور جب کسی مسلمان قوم کو کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور احکام ان کو دیے. تو یہ سارے احکام قرآن مجید میں بھی موجود ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی موجود ہے. اس وجہ سے ہر مسلمان اس کا پابند ہے کہ وہ فرد ہو تو ان احکام پر عمل کرے, وہ گھر بنائے تو اس سے متعلق احکام پر عمل کرے, اور اگر کوئی معاشرہ وجود میں لائے تو اس احکام پر عمل کرے. لیکن ان احکام پر عمل کرنے کے لیے اس کو آبادہ کرنا, اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راستہ بتایا ہے, اور وہ راستہ خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے اللہ کے راستے کی طرف حکمت دانائی کے ساتھ بڑھاؤ, ان کو اچھی نصیحت کرو, اور اگر کوئی بحث بھی کرنی پڑ جائے تو بہت شائستگی اور بہت تہذیب کے ساتھ کرو. تو یہ ہے وہ ذمہ داری جو ہم میں سے ہر ایک پر ڈالی گئی ہے کہ ہم میں سے جس کو جتنا شعور ہے وہ دوسرا لوگ سے پہنچا رہا ہے.
اگلا سوال ہے جی, کیا پاکستان اسلامی انقلاب سے درست ہو سکتا ہے جس طرح لگتا ہے ایران مشہور ہے؟
انقلاب محض انتشار ہوتا ہے, انقلاب سے آج تک کوئی اچھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. انبیاء علیہ السلام نے اسی وجہ سے اس کو کبھی اس لفظ کو بھی استعمال کرنا پسند نہیں کیا. یہ لفظ قرآن مجید میں اور احادیث کے ذخیرے میں بالکل اجنبی. انبیاء علیہ السلام جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ما اريد الا الاصلاح, ہم اصلاح چاہتے ہیں, اور اصلاح ہمیشہ صبر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں پہلے ذہن بدلتے ہیں, فکر بدلتا ہے, اس کے بعد معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. تو اللہ کے پیغمبروں کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے, وہ انقلاب اور اس طرح کی اصلاحات کو استعمال نہیں کرتے. میں کسی انقلاب پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر وقت ہو کہ انقلاب نے فرانس نے دنیا کو کیا دیا تھا اور باقی انقلاب کو کیا دیا تھا.
کل کے پاکستان کو روشن بنانے کے لیے تعلیم اور کرپشن کے علاوہ وہ کون سا ایسا واحد مسئلہ ہے جو نہایت توجہ کا طلب کر رہا ہے؟
اگر یہ سوال میرا لیکچر سننے کے بعد کیا گیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آج رات جا کے اپنی گفتگو دوبارہ سن لوں.
سوال ہے کہ ڈو یو سپورٹ آرگن ڈونیشن؟
ऑर्डर कनेक्शन के बारे में मैं अपनी राय लिख चुका हूँ, आप चाहे तो बहुत आसान राय है, आप देख सकते हैं, उस पर मेरा आर्टिकल उर्दू में भी मौजूद है, अंग्रेजी में भी मौजूद है। मेरे नजदीक इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये बल्कि बाद सूरतों में एक कार्य खैर है। इसके खिलाफ जो राय दिए जाते हैं मैंने उनका तजिया करके बता दिया है, तो उनमें कोई चार नहीं। तो आप जिंदगी में भी अपना कोई उस किसी को डोनेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, मरने के बाद भी करना चाहते हैं।
अगला सवाल है जी, एक गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हुए औरतों को किस तरह का ड्रेस कोड अपनाना चाहिए?
आप मुसलमान मुल्क में रहते हो या गैर मुस्लिम मुल्क में, जो हमें मिलने जुलने के आदाब या एटिकेट्स बताए गए हैं वो एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं। हालात के लिहाज से आप कोई फैसला करें किसी मुल्क में तो वह एक अलग चीज है, लेकिन मजहबी आदाब एक ही है, उनमें कोई फर्क नहीं है। और वो सूरह नूर में अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दिए हैं, और वो कुल चार चीजें हैं, उनमें से दो चीजें मर्दों और औरतों दोनों को कही गई हैं और दो सिर्फ औरतों को कही गई। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब मर्दों और औरतों को आपस में मिलना हो, घरों में, बाहर दफ्तरों में, जहां कहीं भी काम पे जाते हैं, तो अपनी निगाहों में हया रखो, उनकी निगाहें एक दूसरे के खतो खाल का जायजा लेने वाली नहीं होनी चाहिए। वो निगाहें होनी चाहिए कि जो एक शरीफ आदमी दूसरे पर डालता है। तो पहली बात ये फरमाई है। दूसरी बात ये कही है कि मर्द भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और औरतें भी, इसलिए कि हमारे दीन में बदकारी को एक बड़ा जुर्म करार दिया गया। तो अपनी शर्मगाहों पर सब पहरा लगा के, ये दोनों बातें मर्दों को भी खिलाफ करके कही गई है और औरतों को, औरतों को दो जायद बातें भी कही है अल्लाह ताला ने। एक ये कि उनका सीना भी शर्मगाह है, वो उसको ढांप कर देता जब उन्हें आपस में मिलना जुलना हो, और दूसरे ये कि औरतें चूंकि बाज औकात बहुत जेबो जीनत करती हैं, बहुत तनाव संगार करती हैं, जेवरात पहनती हैं, जैसे हम पाकिस्तान में शादी ब्याह तकरीबात में देखते हैं, तो अगर उन्होंने जेबो जीनत किया हुआ हो, गनायब श्रृंगार किया हुआ हो, तो फिर हाथ पांव और चेहरे के सिवा बाकी जिस्म को काम कर रहे हैं। बस ये चार बातें हैं जो अल्लाह ताला ने फरमाई हैं, इसके सिवा जो कुछ भी लोग बयान करते हैं सब अफसाना है, कोई नहीं।
नबी की गैर मौजूदगी में दीन को गैर मुस्लिमों तक पहुंचाना क्या हमारी जिम्मेदारी है? ना खाने की जरूरत है, क्या हमसे क्या पूछा जाएगा?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हमारे ऊपर दीन को पहुंचाने की जिम्मेदारी डाली गई है, लेकिन ये एक तरीके से नहीं डाली गई, इसको तकसीम करके डाला गया है। एक आम फर्द की हैसियत से एक आदमी कारोबार करता है, मुलाजमत करता है, तालीम पा रहा है, आम आदमी की हैसियत से उस पर यह जिम्मेदारी है कि वो अपने माहौल में लोगों को दीन का तारुफ कराता है, शाइस्तगी और तहजीब के साथ, अच्छे उसलूब में, हिकमत के साथ। माहौल का मतलब यह है अपने बच्चों को, अपने अहल वयाल को, अपने दोस्तों को, जहां आप काम करते हैं वहां जिन लोगों से साबका पड़ता है उनको, जहां आप रहते हैं वहां आप अगर सफर करके कहीं जा रहे हैं, और मौजूदा जमाने में अगर आप फेसबुक पर बैठे हो, तो अपने माहौल में एक आम आदमी पर यह जिम्मेदारी है। और इसको सूर कुरान ने बयान कर दिया है कि हम में से हर शख्स इस बात का पाबंद है कि वो अपने माहौल में, देखिए मैं ये दस बार बार बोल रहा, अपने माहौल में ईरान कुरान की कोई जिम्मेदारी आम आदमी पर नहीं डालेंगे। तो कुरान मजीद से कहता है कि पहला काम तो उसको ये करना चाहिए कि ये तफक्कुह हो कि दीन, वो दीन का अर्थ सच इल्म हासिल ना करे, उसको अंदर उतर कर उसको समझे। यानी मेरे उस्ताद इसको बयान किया करते थे कि हमारा मामला ये है कि हमने अपने प्याले में दो कतरे पानी के डालने होते हैं और फिर हम दे के भाकड़े होते हैं कि आइए दूसरों को पिला दें। तो मुझसे उन्होंने, जब मैं उनसे पढ़ रहा था आज से 30-35 साल पहले, तो उन्होंने फरमाया कि अपना प्याला भरते रहिए, जब वो किनारों तक पहुंच जाएगा तो खुद ही बाहर चल जाएगा। तो पहली चीज ये है कि वो दीन का सच्चा आलिम बने, इसको कुरान में जान के ले तो पक्का हो कि दीन दीन की गहरी बसीरत पैदा करे और फिर अपनी कौम को खबर वह कौम की जिम्मेदारी आलिम बन जाए, अपनी कौम की जिम्मेदारी वो भी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के अपनी कौम उसमें भी पाबंद करते हैं। और उसके बाद यह है कि बाकी दुनिया तक पैगाम पहुंचाना उसके लिए मुसलमानों का जो इज्तिमाही हल न होता स्टेट है उस पर जिम्मेदारी डाली गई है कि वो इसका है। तो दावत या तबलीग को अल्लाह ताला ने इस तरह तकसीम कर दिया है और अल्लाह का दीन हमेशा किसी पर उसके लिहाज से जिम्मेदारी डालता है। अगर आप इसको बहुत तफसील से और दराय से पढ़ना चाहें तो इस्लाम पर जो मेरी किताब है मीज़ान उसमें तफसील से पढ़ना चाहें तो उसमें कानून दावत के उनवान से जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए, वो उर्दू में मिल जाएगा अंग्रेजी में। और अगर उसका खुलासा पढ़ना चाहें तो अल इस्लाम के नाम से जो मेरी किताब है उर्दू और अंग्रेजी दोनों में आया उसमें इसी उनवान से निकाल के पढ़ लेना, वहाँ वो दो सफ़ों में खुलासा है और कानून दावत जाहिर है कि चंद सौ सफ़ों पर पैदा।
जब आप कोई नाजायज फायदा हासिल करने के लिए रुपया देते हैं तो उसको रिश्वत कहते हैं, तो उसको तो लाजमन जुर्म होना चाहिए। इसलिए कि आपने अगर कोई नाजायज फायदा हासिल किया तो इसका मतलब क्या है, आपने किसी का हक मारा, आपने किसी से अपने आप को आगे किया है, आपका हक बनता था 2 रुपए आपने 10 रुपए लिए हैं, आपको पाकिस्तान की हुकूमत को टैक्स देना था आपने रिश्वत देके बचाया है, तो इसमें तो जुर्म होने में कोई शुबा ही नहीं, तो रिश्वत इसको कहते हैं। अगर कोई आदमी किसी के मजबूर करने के ऊपर अपना जायज काम कराने के लिए भी रुपया देने के लिए मजबूर हो जाता है तो लेने वाले के लिए रिश्वत है, देने वाले के लिए रिश्वत नहीं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जब ये कहा गया है या राशि व नोटशी में मार तो रिश्वत का मतलब क्या होता है। उसके बाद असल सवाल पर आइए, सूद लेना हराम और उसको अल्लाह ने क्यों हराम किया, तो कुरान में पहली बार नहीं किया, ये तौरात में भी ऐसे हराम है, ये इंजील में भी ऐसे हराम है, ये हमेशा से हराम है। क्यों हराम किया उसको, उसकी वजह बड़ी सादा सी है और वो ये है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर कहा जाए कि वो हराम है तो दलील की भी जरूरत है। मसलन चोरी हराम है, अगर मैं ये कहूं मिलावट हराम है, कम तोलना हराम है, लोगों को गलत दवा बना के देना हराम है, धोखा देना हराम है, कोई मसला तो नहीं होगा ना, समझ लेंगे। ये जो रुपए का किराया लेना है इसके बारे में एक कंफ्यूजन पैदा होता है, वो ये कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी घर दुकान किराए पर दी है तो हर आदमी मानता है कि बिल्कुल ठीक, तो क्या रुपया भी ऐसे ही किराए पर दिया जा सकता है, ये सवाल था। अल्लाह ताला की शरीयत कब आती है, जब कोई कंफ्यूजन होता है जिसको खुदा दूर करता है, तो वो उसने दूर करके ये कहा कि रुपए का किराया देना चाहिए, ये सूद क्या रुपए का किराया, यानी मैंने आपसे रुपया लिया मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ आप उसे किराया तलब कर रहे हैं, तो इस वजह से सूद की तारीफ यह है कि वो सिर्फ कंज्यूमेबल चीजों में होता है, वो यूजेबल चीजों में नहीं होता, इस्तेमाल की चीजों पर नहीं होता। आपने गाड़ी किराए पर ली है, मकान किराए पर लिया है, इसमें भी आप पैसे दे रहे हैं लेकिन ये नाजायज नहीं है। जब आप कोई ऐसी चीज लेते हैं जो यूजेबल नहीं है उसमें सर्व हो जाना है, कंज्यूम हो जाना है। अगर मैं आपसे 2 से दंडम लूं तो 2 से दंडम को चाटूंगा तो नहीं ना, वो खा जाऊंगा मैं। अगर मैं आपसे 10 लाख रुपया कर्ज लूं तो वो मैं कहीं इस्तेमाल करूंगा, यानी तालीम पर लगाऊंगा, अपनी बेटी की शादी करूंगा, कुछ करूंगा, उसके बाद मुझे वो दोबारा पैदा करना है। वो पढ़ा हुआ नहीं कि आपने मुझे मकान किराए पर दिया है तो मैं खाली करके दे दूंगा आपको, गाड़ी मैंने आपसे रेंट पर ली है, रेंट के कारण जगह जगह मौजूद है, तो आपकी मैं घर वापिस कर दूंगा 3 दिन के बाद। लेकिन रुपया मुझे कंज्यूम कर लेना है, इस्तेमाल उस तरह नहीं किया जा सकता उसको जैसे मैं मेज को रेस्टोरेंट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इस वजह से उसमें दोनों मशक्कत हो जाती है। यानी एक अब आपको उसको दोबारा पैदा करना है, दूसरा कर्ज देने वाला कहता है कि मुझे इसका किराया भी दो, तो अल्लाह ताला ने इसको जुर्म करा दिया। ये इसकी हकीकत है। जहां तक देने का ताल्लुक है या सूद का काम करने वाले इदारों में काम करने का ताल्लुक है, अल्लाह ताला ने प्रयास इनमें से किसी को हराम नहीं। आप कुरान पढ़ लीजिए, आप हदीस पढ़ लीजिए, किसी को नहीं। जिस वक्त सूद को आउट ना कर दें, मसलन आज पाकिस्तान में हम ऐलान करते हैं कि कल 10 बजे से सूदी कारोबार बंद कर दिया गया, उसके बाद देना भी ममनू हो जाएगा, उसी राय में काम कर रहे हो। तो जब तक ये आउटला करार नहीं किया जा सकता, रसूलुल्लाह ने इसको आखिरी हज पर आउटला करार दिया था, हराम भी हमेशा से हराम कभी नहीं था। सूरह रूम मक्के में नाजिल हुई है, उस वक्त भी हराम था, उसने इसकी हुर्मत का ऐलान किया है। आले इमरान तीसरी हिजरी में नाजिल हुई, उसमें भी इसका ऐलान किया है, ये जायज नहीं है। लेकिन इसको स्टेट की सतह पर, कानून की सतह पर आउटला करार दिया गया, यानी इसको कानूनी लिहाज से तब इलीगल करार दिया गया। जैसे ही वो आप करेंगे तो कमीशन से यही कहती है कि उसके बाद देना देना सब कुछ रोक दिया जाए, तो हराम सिर्फ सूद खाना है। इस वजह से मेरे नजदीक जो मकान लोग लेते हैं बैंक से या गाड़ी लेते हैं, वो दोनों पहलुओं से बिल्कुल जायज है। एक इस पहलू से कि वो असल में एक यूजेबल कमोडिटी में तब्दील हो चुकी होती है, वो कंज्यूमर कहती है, और दूसरे ये कि अगर कोई इसरार भी करे तो आप उसमें दे रहे होते हैं।